Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Living values. इस पूरी श्रृंखला में हमने ये कोशिश की है कि किस तरह से जिन मूल्यों को हम भूलते जा रहे हैं उनकी कितनी ज़रूरत है आज हमें समाज में, और किस तरह से छोटे छोटे तरीके अपनाकर एक बड़ा काम कर सकते हैं, किस तरह से हमारी आत्मशक्ति और आत्मबल को बढ़ा सकती हैं ये सभी वैल्यूज़ अगर हम इन्हें जीवंत रखें। इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे रिस्पेक्ट की। रिस्पेक्ट यानी सम्मान। क्या हम दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं या हम खुद अपने आप का भी सम्मान कर रहे हैं? सम्मान दिया जाना चाहिए तभी मिलता है, या फिर अगर हम लोगों का सम्मान करेंगे तब लोग हमारा सम्मान करेंगे? बहुत से ऐसे सवाल हैं और कहीं ना कहीं ये मूल्य, ये वैल्यू ख़त्म होती जा रही है इस पूरे समाज पर। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारी खास मेहमान माउंट आबू से आई हैं ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन। तो शीलू बहन, आपका स्वागत है। सम्मान की अगर बात करते हैं तो कहा जाता है कि सम्मान आँखों में भी होता है, सम्मान एक जेस्चर से मिल जाता है, सम्मान शब्दों में होता है, लेकिन अगर आज हम देखते हैं पूरे समाज में तो सम्मान की जो वो भावना है वो ना अपने आप से रह गई है, अपनी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम बड़ों की रिस्पेक्ट करना भूल रहे हैं, रिश्तों में सम्मान नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ है ऐसा कि समाज में ये वैल्यू जो है एकदम से बिखर कर रह गई है?
सही आपने कहा कि सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। जब तक हम सम्मान दूसरों को नहीं देंगे तब तक हम दूसरों से अपेक्षा भी न करें कि वे हमें सम्मान दें। अक्सर करके हम यही शिकायत करते हैं, वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता तो मैं उसे क्यों रिस्पेक्ट दूँ, वो मुझे रिस्पेक्ट दे तो मैं उसे रिस्पेक्ट दूँ। लेकिन ये देने से ही मिलता है, मांगने से नहीं मिलता। तो इसीलिए मुझे देना होगा। आप कैसे देंगे ये भी एक प्रश्न है। तो जैसे आपने कहा, एक मुस्कुराहट भी एक रिस्पेक्ट का स्वरूप है। कोई मेरे सामने आए और मैं उसके सामने मुस्कुरा दूँ, ये भी एक रिस्पेक्ट है। वो मेरे सामने आए और मैं उसे गुड मॉर्निंग, हेलो कहूँ या हैंडशेक करूं, नमस्ते करूं, ये भी एक रिस्पेक्ट है। मैं उसके सामने आते ही उसको दो शब्द प्यार के कहूं या उनकी तारीफ के कहूं, ये भी एक रिस्पेक्ट है।
और एक और बात कही जाती है रिस्पेक्ट के साथ कि यू हैव टू अर्न इट। हमें वो जो सम्मान है, जो इज़्ज़त की हम बात करते हैं, उसे हमें खुद पाना होता है।
हाँ, तो अगर हम रिस्पेक्ट चाहते हैं तो मांगने से तो नहीं मिलता, लेकिन देने से मिलता है। तो हम देते तो हैं, कई बार हमें नहीं मिलता रिस्पेक्ट क्योंकि शायद हमारा व्यवहार उस रूप से नहीं है जो हम रिस्पेक्ट के पात्र भी रहें। तो हम रिस्पेक्ट के पात्र बने, हमारे अंदर औरों के प्रति जो भावना है वो ऊँची हो तो अवश्य रिस्पेक्ट हमें मिलेगा। तो इसलिए ये भी ऐसे गुण हैं जो मांगने से नहीं मिलते हैं। हम सबसे बड़ी यही भूल करते हैं कि हम समझते हैं कि दूसरा पहले दे फिर मैं दूँ।
एक यहाँ हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि हमारी सभ्यता का प्रतीक रहा है कि अपने बुज़ुर्गों के हम पांव छूते हैं, या बच्चे हैं तो उन्हें प्यार से बात करते हैं लेकिन उन्हें भी आप कह के बात करते हैं, ये हमारी सभ्यता का प्रतीक रहा है। और पति पत्नी है उनमें भी आप और तुम तक चलिए बात आ जाती है। लेकिन ओवर द ईयर्स जो ओपननेस आई सोसाइटी में, और जिस तरह से आत्मीयता का एक ये कहा जाना इंडिकेशन होने लग गई कि पाँव छूना जो है वो पुरानी बात है, परंपरा है, और ये है, और सीधा जो बातचीत है वो तू तड़ाक पे उतर आई, दोस्त हैं तो सीधा तू से शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है कि ज़्यादा आत्मीय है, ज़्यादा क्लोज है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हम वो उस सम्मान को नहीं खो रहे? क्या वो भाषा जो है, भाषा विकार जो आ गया है, ये भाषा जो आत्मीयता का प्रतीक बन रही है, वो कहीं ना कहीं डीप विद इन हमें रिस्पेक्ट को ख़त्म कर रहा है?
बिल्कुल। हम समझते हैं कि मैं तू तू कह के या तुम कह कर के मैं आत्मीयता जता रहा हूँ। वास्तव में ये आत्मीयता नहीं है। सच्ची आत्मीयता तो यही है कि हम उसे रिस्पेक्ट दें आप कह कर के। और अगर हम आप कहते हैं तो अवश्य वो भी हमें आप कहेगा। जिस प्रकार मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे तू तू कह कर के बात करे, तो मैं भी उसे तू तू कह कर बात न करूं, तब तो वो मुझे आप कहेगा क्योंकि मैं उन्हें आप कहती हूं।
सम्मान में भाषा का कितना कंट्रीब्यूशन है। एक बार कई बार ये भी देखा गया है कि तू करके भी बात कर रहे हैं, लेकिन जेस्चर, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आँखों से सम्मान है, वो उतना ही है। तो सम्मान का जो प्रतीक है या रिस्पेक्ट का जो एक सिंबल है, उसमें भाषा का कितना कंट्रीब्यूशन है।
पहले ज़माने में जब राजाओं का राज्य था तो कितने सम्मान से उन राजाओं को बुलाया जाता था, संबोधित किया जाता था, या उनका नाम उच्चारण करके हाँ उनका सम्मान किया जाता था। आज वो भाषा तो नहीं रही, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं ये सम्मान गंवा रहे हैं। आत्मीयता का ये भाव नहीं है कि हम इन शब्दों में जो सम्मान भरा हुआ है वो हम ख़त्म कर दें। पहले ज़माने में तो यहाँ तक बात थी कि पत्नी अपने पति का भी नाम नहीं लेती थी, आपका भाई वे ना इस प्रकार से कहती थी, और आजकल तो पूरा उस पति का नाम भी ले लेते हैं। जब वो पहले कहते थे आपका भाई, आपके बच्चे, यानी इसमें ऐसे लगता था जैसे ये भगवान का है या आपका है, वो मोह की रग या ये पोजेसिवनेस की रग नहीं होती थी आप। तो ये आप कहना, पहले आप, ये एक सम्मान की निशानी है। परंतु आज मनुष्य के अंदर इतना स्वार्थ आ गया है जो समझता है पहले मैं। जहाँ बदलने की बात आती है वहाँ कहेंगे पहले आप, और जहाँ प्राप्त करने की बात आएगी वहाँ कहेंगे पहले मैं।
बहुत सुंदर आपने बात ये कही। हाँ। सच में यही हो रहा है कि जहाँ बदलना है, जब बदलने की बात आती है तो हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला बदले, वो बदलेगा, लेकिन जब लेना है तो पहले मुझे मिलेगा।
लेकिन होना चाहिए इसके विपरीत, जहाँ बदलने की बात आती है वहाँ पर हम कहें अच्छा मैं बदल जाता हूँ, मैं बदल कर दूसरे को बदलने की प्रेरणा दूंगा। और जहाँ प्राप्ति की बात है अच्छा पहले आप, अगर हम किसी को आगे रखते हैं तो वास्तव में हम पीछे नहीं रहते हैं। हम क्या समझते हैं कि आज कंपटीशन की दुनिया में हमें आगे जाना है, हमें आगे जाना है, और कई बार हम दूसरे की टांग खींच करके भी आगे जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सदा हम याद रखें कि हम दूसरे के लिए खड्डा खोदेंगे तो पहले खुद गिर जाएंगे। हम ये नहीं चाहते कि कोई मेरे लिए खड्डा खोदे तो मैं दूसरे के लिए खड्डा खोद कर सोचूंगा मैं उसको गिरा दूंगा। ये कर्म की बड़ी गति है। मैं वही कर्म करूं जो मैं दूसरों से अपने प्रति अपेक्षा करता हूं। जिसको कहते हैं डू अन टू अदर्स एज यू एक्सपेक्ट अदर्स टू डू अन टू यू।
यस,
तो रिस्पेक्ट का यहाँ भाव होता है कि देना। वास्तव में हमने देखा है कि देने में जो खुशी है वो लेने में नहीं, और ये सद्गुण ऐसे हैं जो मांगने से नहीं मिलते हैं, ये देने से बढ़ते हैं। आप कोई भी गुण देख लीजिए, हम कहेंगे शांति शांति शांति, देने से शांति हमारी बढ़ती है, प्यार देने से प्यार बढ़ता है, रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट बढ़ती है। लेकिन आज ये विडंबना हो गई है कि हम समझ से पहले मुझे मिले। छोटे चाहते हैं कि बड़े हमें रिस्पेक्ट दें, बड़े चाहते हैं कि छोटे हमें रिस्पेक्ट दें, लेकिन ये परस्पर रिस्पेक्ट का की बात है। बस देना है तो अपने आप मिलेगा, ये एक समझ हमारे अंदर हो।
बहुत सुंदर आपने बात ये कही कि सम्मान अगर हमें पाना है तो उसके लिए हमें देना भी बहुत ज़रूरी है, और चाहे सम्मान किसी से भी हम उम्मीद कर रहे हों कि हमें सम्मान मिलेगा। आज के अगर वक्त में देखें तो ख़ासकर संस्कारों की जहाँ बात करते हैं, जहाँ आदर्शों की बात, इन मूल्यों की बात करते हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं, जो जनरेशन हैं, यंगर जनरेशन जो है, उनमें ये ख़ासकर सम्मान, रिस्पेक्ट करने का जो पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, वो कहीं आ ही नहीं रहा। आप बच्चे को बुलाएंगे भी तो मुझे अभी तक याद है कि कोई अगर मेरी माँ मुझे पुकारेगी तो मैं उन्हें जी कह के ही जवाब दूंगी, और यहाँ अगर आज किसी को बुलाया जाता है तो सीधा हाँ करते हैं। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जो कहीं ना कहीं ये हमारी शायद ग्रोथ में ही शामिल हो जाते हैं, ये इनकॉर्पोरेट करना कितना ज़रूरी है।
ये मैं मानती हूँ कि इसमें बड़ों का भी दोष है।
जी डेफिनेटली, वही हाँ, मैं आ रही थी।
तो अगर बड़े आपस में उस प्रकार से उस रिस्पेक्ट से एक दो से बात करते हैं तो छोटे भी वही सीखते हैं। हम छोटों को क्यों दोष दें? मुझे याद है मैं किसी घर में गई थी तो मैंने देखा भाई बहन आपस में लड़ रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। तो मैंने बच्चों से पूछा, आप लोग क्या कर रहे हो? तो कहा वी आर प्लेइंग मम्मी डैडी।
हाँ
मैंने कहा मम्मी डैडी ये कौन सा खेल होता है? कहते हमारे मम्मी डैडी ऐसे ही करते हैं, तो मैं हम भी वही कर रहे हैं। तो समझिए कि अगर मम्मी डैडी भी आपस में एक दो को रिस्पेक्ट देंगे तो नेचुरली बच्चे भी रिस्पेक्ट देंगे, और अगर आपस में एक दो को रिस्पेक्ट नहीं है तो बच्चे भी बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे।
आज का ये दौर जो है उसमें एक और बड़ी बात ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि बच्चा हमारा दोस्त है, अगर मेरे कंधे तक आ गया तो मैं उस पर हाथ रख के मेरे दोस्त की तरह करूँगा, उनके साथ ड्रिंक भी लूँगा, पहला ड्रिंक मैं उसको अपने साथ कराऊँगा अगर उसका जूता मेरे जूते के साथ आ गया। लेकिन यहाँ आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हम बच्चे को दोस्त बना लें? ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं कि रिस्पेक्ट का जो दायरा है वो तो नहीं टूटना चाहिए,
बिल्कुल
क्योंकि
बिल्कुल
कई बार ये देखा गया है कि बच्चा जो है नाम लेके ही अपने पिता या माँ का बुला रहा होता है। क्या ये जो पूरा चेंजिंग सिनारियो है जिसे हम कहते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता का बहुत ज़्यादा हम पे प्रभाव ये पड़ता जा रहा है कि वहाँ पे पॉप नहीं बोलते हैं, फादर नहीं बोलेंगे तो सैम बोलेंगे, अपने फादर का ही नाम लेके बोलेंगे, तो यहाँ पे भी अब ये बहुत ज़्यादा देखा जाने लग गया है। क्या ये हम सही दिशा में हैं? इतना खुलापन हम उनको दे रहे हैं अपने बच्चों को कि ठीक है आप हमारे दोस्त बन जाइए, लेकिन एक इज्जत का या सम्मान का जो दायरा है वो बनाए रखना चाहिए।
बिल्कुल बनाए रखना चाहिए। हम अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं सचमुच ये देखा जाए, और परिणाम स्वरूप हम उससे उसके कारण असूलों से भी दूर होते जा रहे हैं, अपने वैल्यू सिस्टम को गंवाते जा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि पश्चिमी संस्कृति को हम अपना रहे हैं, ये तो हम बहुत सिविलाइज्ड हो गए हैं, हम तो बहुत एडवांस्ड हो गए हैं, पर ये एडवांसमेंट नहीं है।
बिल्कुल, यहाँ ये जो हमने बात की कि अपने आप उसको दोस्त बना के वो सम्मान का दायरा ही ख़त्म कर देंगे, उसके रिपरकशंस क्या होंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज तो हम इस दौड़ में तो चल रहे हैं कि चलिए हम उनको दोस्त बना के सारे दूरियाँ तोड़ देते हैं, यू नो सम्मान का पूरा वो भी पूरा तोड़ करके एक बहुत क्लोज हो जाते हैं, लेकिन उसके आगे आने वाले वक्त में क्या रिपरकशंस हैं?
आगे आने वाले वक्त में ये होगा कि जैसे छोटे बड़ों से सीखते थे, अभी वो बात ही ख़त्म हो जाएगी कि हमें कुछ बड़ों से सीखना भी है, और ही हम समझने लगे कि हम ज़्यादा जानते हैं, बड़े क्या जाने, वो तो पुराने ज़माने के हैं। लेकिन वो पुराने ज़माने के लोगों में जो अनुभव है वो अनुभव तो वही समझे वही जाने। कई कहते भाई हमने ऐसे ही तो बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, इतना जीवन में अनुभव होगा तो हम औरों के अनुभव से सीखें। कई बच्चे समझते कि हम अपने आप सीखेंगे, औरों के अनुभव से हम क्यों सीखें? अब मान लीजिए मैं आग में अंगुली डालती हूँ तो ज़रूर जलेगी, पर कोई सोचे नहीं नहीं मैं भी तो डाल के देखूँ ना जलती है या नहीं, तो ये तो सही बात नहीं है, क्योंकि बड़ों ने कहा भाई हाँ जलती है तो मैं समझ जाऊँ कि जलती है, पर मैं भी आग में अंगुली डालूँ तब मानूँ कि जलती है या नहीं जलती है, तो ये तो अपनी ही शक्ति को गंवाना है।
बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि अपने ही अनुभव से सीखना भी चाहते हैं, चलिए ये भी एक अच्छी बात है कि खुद अपने आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, लेकिन सही रास्ता तो कम से कम देख सकते हैं। बड़ों का जो अनुभव है उसे दिशा तो सही मिल सकती है, चाहे खुद ही जीना तो हर एक को अपनी ज़िंदगी अपने आप ही पड़ती
जी,
है।
जी
शीलू बहन, अगर हम देखें तो समाज में एक जो आज हमने बात ये की कि आज अगर हम बचपन से ही उन्हें दोस्ती का हाथ पकड़ा रहे हैं, सम्मान और रिस्पेक्ट का दायरा ही ख़त्म कर रहे हैं, हमारे बराबर ही आ गए हैं, आगे आने वाले वक्त में जो आज हमारे बुज़ुर्गों का जो जिस मुकाम पे पहुँचे हैं इतने अकेले हो गए हैं वो बुज़ुर्गों को, अगर हम देखते हैं बड़े बूढ़े जो हमारे हैं, चाहे वो हमारे इन लॉज हों, चाहे हमारे वो माता पिता हों, दादा दादी हों, नाना नानी हों, वो सब अकेले थकेले पड़े हैं, कोई अमेरिका चला गया है बच्चा या कोई अलग रह रहा है क्योंकि जॉइंट फैमिलीज टूट के, तो कहीं यही तो नहीं कारण है कि क्योंकि हमने बचपन से उन्हें रिस्पेक्ट देना सिखाया ही नहीं, जैसे ही हम बड़े हुए जैसे ही बूढ़े हुए हमें अलग थलग कर दिया गया?
हो सकता है, ये भी हम मानते हैं, क्योंकि बच्चे दूर चले गए यही सोच कर के हमारी वहीं उन्नति है, और इसमें वैसे तो कोई बुराई नहीं है, ये तो बड़ों का त्याग है जो बच्चों को अपने से दूर रखते हैं ताकि उन बड़ों की उन बच्चों की उन्नति हो, ये तो अच्छी बात है। तो बड़ों का त्याग है, बड़ों का एक एक मानो जेनरोसिटी है जिसके आधार पर बच्चों को दूर रखते हैं, लेकिन जितना ही बड़े इतना त्याग करते हैं उतना ही फिर बच्चों का ये कर्तव्य बनता है कि वो पूरी उनकी जिम्मेदारी भी उठाएं।
जी
आज ये स्थिति हो गई है कि बच्चे फिर जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते, लेकिन जैसे हमारे शास्त्रों में गायन है, पितृ ऋण, मातृ ऋण, आचार्य ऋण, ये सब ऋण माने गए हैं। अंत घड़ी तक एक पुत्र का पिता के प्रति क्या मानो उसके दायित्व हैं, उसकी जिम्मेदारियां हैं, ये उसको समझना बहुत ज़रूरी है।
बिल्कुल,
जिस पिता ने उसे बड़ा किया, माँ ने जिसके लिए इतना त्याग किया, उस माँ बाप को हम ठुकरा देते हैं क्योंकि हम बड़े हो गए हैं। तो एक दिन हम ईश्वर को भी ठुकरा देते हैं कि भाई ईश्वर से भी हमारा कोई नाता नहीं है। आखिर वो स्थिति आ जाएगी जब हम खुद को ही खुद से ठुकरा देंगे क्योंकि हम असहाय हो जाएंगे। और अगर कोई माता पिता को ही स्वीकार न करे तो ये तो ऐसे हो गया जैसे वो अनाथ हो गया।
बिल्कुल,
कोई अनाथ बच्चे को माता पिता नहीं है तो कोई सहायता नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई उनके ऊपर छत्र छाया नहीं है, बड़ों की दुआएं नहीं हैं, क्योंकि दुआएं भी बहुत काम करती है।
और इस पूरे कंसेप्ट में अगर जैसे आपने कहा कि हम सबको नकारते जा रहे हैं, माँ बाप को नकारा, ईश्वर को नकार देंगे, खुद को ही नकार देंगे, तो कहीं ना कहीं क्योंकि हम खुद का ही सम्मान नहीं कर रहे। जैसे कि यार आप हर बार ये कहती हैं कि आत्मा का जो मूल है वो सारे ये वैल्यूज़ हैं जिनकी हम बात करते आ रहे हैं, तो क्योंकि अगर हम उन्हें ही नहीं अपने आ रहे अपने अपने जीवन में, इसका मतलब हम अपनी आत्मा का सम्मान नहीं कर रहे।
बिल्कुल, हम अपने आप को ही खोते जा रहे हैं। तो खुद का भी सम्मान ज़रूर करें, अर्थात अपनी वैल्यूज़ का सम्मान करें, जिसको हमने डिटर्मिनेशन कहा कि कुछ भी हो जाए हम अपने वैल्यूज़ को गंवाएं नहीं, ये है अपना सम्मान करना। उसी प्रकार बड़ों का सम्मान करें, चाहे समान है उनका भी सम्मान करें। आज हर एक को सम्मान चाहिए, ये नहीं कि केवल बड़ों को चाहिए, छोटों को भी चाहिए। पहले ज़माने में कहा करते थे कि छोटों को प्यार दो, बड़ों को सम्मान दो। आज छोटों को भी सम्मान चाहिए। हम तो अगर किसी बच्चे को कहेंगे बेटा ये करो, बच्चा नहीं करना चाहेगा तो हम नहीं कुछ कर सकते। इसलिए कई कह बच्चे को सीधा नहीं कहेंगे कि बच्चे ये करो, उनसे पूछेंगे बेटा ये करना चाहोगे, ये करोगे? अगर बेटा करना चाहेगा तो कहेगा हाँ, नहीं करना चाहेगा तो कहेगा नहीं। तो हम ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते, ये बात ठीक है। पहले ज़माने में हम बच्चे को जो आदेश देते तो वो बच्चे को करना ही पड़ता था, आज वो स्थिति है। तो इसमें हम फ्रेंडशिप की बात क्यों ना करें, अवश्य ये भी रिस्पेक्ट है, हो सकता है वो नहीं करना चाहता है तो हम ज़बरदस्ती भी ना करें।
बिल्कुल, देश काल के साथ जो है वो वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, स्वरूप बदल जाते हैं बातों के। यहाँ एक बात और ये आती है कि सम्मान या इज्जत या रिस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसके मूल में क्या है, क्या ऐसा आस्पेक्ट है जो ज़रूरी है और उसको जानना बहुत ज़रूरी है।
मूल में यही एस्पेक्ट है कि हम रिस्पेक्ट तब दे सकते हैं जब हम उसकी अच्छाई को देखेंगे। इसमें सब आ जाते हैं, चाहे व्यक्ति की बात आती है, चाहे धर्म की बात आती है। आज हम देखते हैं धर्मों के बीच में झगड़े हैं। हम समझते हैं मेरा धर्म ऊंचा है, वो समझता है मेरा धर्म ऊंचा है, और दूसरे के धर्म को हम नीचा करना चाहते हैं, अपने धर्म को ऊंचा समझते हैं। लेकिन सभी धर्मों को समान मान्यता हमारे देश में है, डेमोक्रेसी है, प्रजावाद है, धर्म निरपेक्ष हमारा देश है, तो सभी को हम सम्मान दें, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक धर्म में वो समानता है जो हम सब जीवन में चाहते हैं। जैसे एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष का बीज तो एक ही है, तो ये संसार का वृक्ष भी एक कल्प वृक्ष की तरह है जिसका बीज एक ही परमात्मा है। उस एक बीज परमात्मा से ही ये सारी रचना भगवान की उत्पन्न हुई है। तो अगर हम सबको सम्मान दे रहे हैं, इसका मतलब हम उस बीज को भी सम्मान दे रहे हैं, ईश्वर को भी सम्मान दे रहे हैं। अगर हम सबको सम्मान नहीं देते, इसका मतलब ईश्वर को ही सम्मान नहीं देते
जी।
और दूसरी बात, चलो सम्मान हम समझते हैं, हम सम्मान क्यों दें? अच्छा, सम्मान न दें तो कम से कम उनको टॉलरेट तो करें। आज तो वो स्थिति आ गई है जो टॉलरेंस ही नहीं है उसके प्रति। हम कहेंगे ये धर्म हमें चाहिए ही नहीं। अब वो धर्म वास्तव में वो भी ऊंची शिक्षा दे रहा है, हर धर्म ऊंची शिक्षा दे रहा है। अच्छा चलिए, टॉलरेट की जहाँ बात आती है, चलो हम समझ से नहीं कर सकेंगे, पर एक्सेप्ट तो करें। ये तो वैरायटी ड्रामा है। आप एक पिक्चर देखने जाते हैं तो उस पिक्चर में तो वैरायटी एक्टर्स को देखते हैं। आप कहेंगे मैं इस एक्टर को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं टॉलरेट नहीं करूँगा, मैं रिस्पेक्ट नहीं दूँगा, तो आप वो ड्रामा कर कैसे सकेंगे?
बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात की। हाँ शिलू बहन जी, एक और कन्फ्यूजन हमारे जनरेशन में वो ये है कि रिस्पेक्ट और प्रेम, अगर मैं आपसे प्रेम करती हूँ तो मुझे आपकी सम्मान करने की ज़रूरत नहीं, मुझे इज्जत देने की क्या जरूरत, मैं तो प्रेम करती हूँ, प्रेम तो सहज है, निर्मल है, ऐसे करती हूँ, मैं प्यार करती हूँ आपसे। लेकिन क्या प्रेम जो है उसमें सम्मान की अपनी वैल्यू है, अपनी उसका जो इनकॉर्पोरेट होना बहुत ज़रूरी है।
बिल्कुल, प्रेम और रिस्पेक्ट को हम अलग क्यों करें? जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ रिस्पेक्ट है ही है। अगर उस प्रेम में स्वार्थ आ गया वो प्रेम ही नहीं है। जहाँ प्रेम निस्वार्थ है, अल्ट्रुइस्टिक है, वहाँ ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट है ही है। इसलिए रिस्पेक्ट और प्रेम को हम अलग ना करें। लव एंड रिस्पेक्ट गो टुगेदर। Where I love someone, I respect that person also.
It has to be an inherent part of being loving.
Definitely, definitely.
तो सिमिलरली, लेकिन जब इसे जीवन में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि अगर हमें सम्मान चाहिए तो हमें सम्मान देना होगा, यही एक मूलभूत आधार है सम्मानित ज़िंदगी जीने का। लेकिन बहुत सारी हिंड्रेंसेज आती हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं कि सम्मान तो मैं चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए, तो जब तक मैं आपके साथ हूँ तो मैं बड़ा मीठी बन के आप दिखा रही हूँ कि हाँ मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ, आपको सम्मानपूर्वक आपसे बात भी कर रही हूँ सब कुछ, लेकिन इनहेरेंट रिस्पेक्ट नहीं है, अंदर से मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, तो वो कन्फ्लिक्ट जो है, वो कॉन्ट्राडिक्शन जो है, वो कहीं ना कहीं मुझे ही गलत कर रही है।
हाँ।
तो उससे कैसे अवॉइड किया जाए?
वो क्यों नहीं मैं रिस्पेक्ट दे पाती हूँ? क्योंकि मेरा ईगो है। यहाँ एक ईगो क्लैश की बात आती है। जहाँ ईगो होगा वहाँ हम रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। इसलिए जैसे हमने पहले भी कहा ह्यूमिलिटी की बात, तो ह्यूमिलिटी एंड ईगो डोंट गो टुगेदर। सिमिलरली रिस्पेक्ट एंड ईगो डोंट गो टुगेदर। ह्यूमिलिटी में रिस्पेक्ट है, क्योंकि हम हम्बल हैं तो हम दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, और जब हम्बल होकर के हम रिस्पेक्ट देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी हम्बल होकर के रिस्पेक्ट देगा। इसलिए रिस्पेक्ट मांगा नहीं जाता है, दिया जाता है। जैसे दुआओं के लिए भी कहते हैं, दुआएं मांगी नहीं जाती है। कई लोग हमारे पास आएंगे और कहेंगे बस बहन जी दुआ करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, दुआ करो। भगवान से भी हम यही कहते हैं, भगवान हमें दुआ करो। तो दुआ भी कोई चीज़ मांगने की थोड़ी होती है। अगर हम आज्ञाकारी हैं तो अपने आप भगवान की भी दुआ मिल जाती है, बड़ों की भी दुआ मिल जाती है, समान की भी दुआ मिल जाती है। हम एक दो को रिस्पेक्ट देते हैं तो उनकी भी दुआ मिल जाती है। तो इसी प्रकार ये रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ा वैल्यू है। और केवल शरीर को रिस्पेक्ट देने की बात नहीं है, ये आत्मा को रिस्पेक्ट देने की बात है। अगर हम आत्मा को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो मानो कि परमात्मा को भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। कई कहते हैं बस हम तो भगवान को ही रिस्पेक्ट देते हैं, मनुष्यों को रिस्पेक्ट नहीं देते, तो ये ईश्वर का ही इनडायरेक्टली हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। तो परमात्मा को रिस्पेक्ट देना माना सबको देना, और सबको देना माना ईश्वर को देना। और रिस्पेक्ट में भी ये भी नहीं है कि हम एक को देते हैं दूसरे को नहीं देते। कई बार होता ना, हम इसके साथ मेरा प्यार है पर इसके साथ प्यार नहीं, इसके लिए मुझे बहुत रिस्पेक्ट है पर इसके लिए नहीं है। हम ये डिफरेंशिएट जो करते ना, ये भी सही नहीं है। तो इसलिए मुझे रिस्पेक्ट देना है, मुझे सम्मान देना है, और उसके लिए आत्मा को देखना है, और उसके लिए आत्मा के गुणों को देखना है। अगर हम किसी के गुणों को देखते, ये मेरे लिए लाभदायक है, मैं अपनी दृष्टि को शुद्ध और पवित्र बना रही हूँ। अगर मैं अवगुण ही देख रही हूँ तो मैं दृष्टि दोष में आ रही हूँ, पर चिंतन में आ रही हूँ। फिर मैंने किसी का अवगुण देखा, फिर मैं दूसरे को कहूँगी ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसा है, तो फिर पर चिंतन होगा, पर दर्शन होगा, पर दोष होगा। लेकिन आत्मचिंतन हो, आत्मिक दृष्टि हो, आत्मिक भावना हो, तो सचमुच ये जीवन कितना ऊंचा हो जाए।
बहुत सुंदर आपने बात कही। तो इस मोड़ पर अब मेडिटेशन की तरफ चलते हैं कि ये जो हमने रिस्पेक्ट देने की बात, सम्मान की हमने बात की कि सम्मान जो है वो देने से ही वापस मिलता है, तो उसको हर रोज़ कैसे अपनी ज़िंदगी में हम इनकॉर्पोरेट करें, इस पूरी वैल्यू को कैसे अपने अंतरात्मा तक पहुँचाएँ।
तो मेडिटेशन के माध्यम से तो सबसे पहले हम सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में हम स्वयं के मूल्य को समझते हैं कि मैं आत्मा कितनी महान हूँ, कितनी श्रेष्ठ हूँ, कितनी पावन हूँ, और मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, जो परम पिता है, परम आत्मा है, परम पवित्र है, परम पूज्य है, और उस परमात्मा की मैं संतान हूँ, जो सर्व आत्माओं के पिता हैं, जिसको सारी दुनिया सम्मान देती है, वो मेरे परम पिता हैं। तो खुद के प्रति भी रिस्पेक्ट, उस परमात्मा के प्रति भी रिस्पेक्ट, और जिसकी ये सारी रचना है उस रचना के प्रति भी उतनी ही रिस्पेक्ट। तो समझ, तो इससे हम अनुभव करते हैं कि हमारा जीवन बहुत ही रिस्पेक्टेबल बन जाता है। तो चलिए कुछ घड़ियों के लिए हम आत्मसम्मान की स्थिति का अनुभव करें, स्वयं को सम्मान दें, अर्थात मैं आत्मा कितनी महान हूँ, मैं आत्मा तो देव आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ, धर्मात्मा हूँ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, उस पिता परमात्मा के लिए भी मुझे उतना ही रिस्पेक्ट है जितना मैं स्वयं के प्रति रखती हूँ। मुझे ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें परमात्मा का नाम बदनाम हो, क्योंकि परमात्मा ने हमें इस संसार में अपने स्वरूप में भेजा कि जाओ बच्चे, उस ईश्वर का नाम रोशन करो। तो मुझे हर कर्म ईश्वर का नाम रोशन करना है, यही लक्ष्य रखकर कर्म करना है। तो आत्मा को बहुत शक्ति प्राप्त होगी, इसी दृढ़ता से इस संसार में रहना है, इसी आत्मसम्मान से हमें यह जीवन जीना है, तब ही हमारा यह जन्म सफल होगा। और जन्म जन्म हमारे सार्थक होंगे। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत सुंदर, और किस तरह से आपने हमें इस बात का एहसास कराया कि सम्मान या रिस्पेक्ट की जो हम बात करते हैं वो आत्म से शुरू होती है, स्व से शुरू होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट से शुरू होती है। उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरा हम वैल्यूज़ को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इन्हें अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करके हम एक बेहतर और शांतिमय जीवन की तरफ लेकर जा सकते हैं। सम्मान की जहाँ तक बात है तो बात आज शीलू बहन ने यही कही कि शुरुआत करें सेल्फ से। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहला, आत्मसम्मान सबसे पहला मंत्र है जो हमें याद करना है, और उसके बाद जितना सम्मान हम दूसरों को देंगे उतनी ही हम अपेक्षा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। शीलू बहन, आज के इस चर्चा के लिए, इस विषय पर जो हमने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ वक्त है कि अब आपसे विदा ली जाए, लेकिन आपको बता दें कि ये श्रृंखला लिविंग वैल्यूज़ आपका अपना प्रोग्राम है, इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। आप चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com और हमारा फ़ोन नंबर है 9873666555। तो फिर अगली कड़ी में इस बार हम बात करेंगे, हमने बात की है अभी सम्मान की, अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता की, यानी कि फ्रीडम। उसके क्या मायने हैं और सही तरीके से हमें स्वतंत्र किससे होना है। आप बने रहिएगा लिविंग वैल्यूज़ में, उन्हें अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते रहिएगा। अगली कड़ी में करेंगे फिर मुलाकात। नमस्कार। Sacred sound, oh, shine.